اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرے پارے کی پہلی سورت جو ہے وہ ہے، اسے سورہ نبا کہتے ہیں، سورہ نبا، اما پارا کی پہلی سورت۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، اما یتفعلون عن النبا لذین۔ اب ہم اگر اس کا جو ترجمہ آپ کے پاس دیا گیا ہے اسی کو لے کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے کچھ اور بات کہہ رہے ہیں کہ آپ آپس میں کیا پوچھ گچھ چل رہی ہے۔ اما یتسالون، یعنی کیا چل رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا سوال اٹھ رہے ہیں، یتسالون سوال اٹھ رہے ہیں، اما کیا، کیا سوال چل رہے ہیں، ان نبا لذین، بڑی خبر کے بارے میں، ان بڑی کے بارے میں، نبا خبر، عظیم بڑی۔ اب یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں عظیم کا لفظ جو ہے یہ ہمارے یہاں بڑا لیا جاتا ہے، جس کا حجم سائز بڑا ہو۔ عظیم اسے کہتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھا جائے۔ عظیم وہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں نہ کرے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا جانتا ہو۔ یہ پہلا لفظ جو ہے عظیم، اس کو ذہن میں دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں اس کا کیسا سیکوینس بنے گا۔ اما یتسالون عن النبا لذین، تم وہ بڑی خبر کے بارے میں تمہارے ذہن میں کیا سوال اٹھتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، اور تم اس کے بارے میں متفق نہیں ہو، مختلف ہو، اختلاف کرتے ہو۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ حقیقت واضح نہ ہو۔ جہاں حقیقت ہوگی وہاں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہوا کہ الذی ہم فی ہے، اس کے بارے میں، فی ہے اس میں، مختلفون۔ اگر آپ اپنے ذہن میں چلنے والے سوالوں کو دیکھیں تو ان کے جواب ہمیں معلوم نہیں، اور اگر ہمیں کوئی جواب معلوم ہے تو وہ دوسروں سے مختلف ہیں، یعنی ہم حقیقت آشنا نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کلا، کوئی بات نہیں، سیعلمون۔ عربی قاعدہ یہ ہے کہ جہاں سین آ جائے وہاں پہ ہے عنقریب۔ یعلمون جان لو گے، جمع کا سیکھا ہے، علم سے ہے۔ کلا، کوئی بات نہیں، سیعلمون، جلدی جان لو گے، یعنی عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی اگر تم دھیان لگاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم دوبارہ فرما رہے ہیں، کلا، کوئی بات نہیں، سیعلمون، تم جلدی جان لو گے۔ اب یہ پانچ باتیں کہہ کے کیا فرما رہے ہیں؟ اب وہ بڑی خبر کو ذہن میں رکھیں، بڑی خبر۔ ارشاد ہوا کہ علم نجعل ارض مہادا، علم نجعل ارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا نہیں دیا؟ اب ذرا غور کریں، ارض کہتے ہیں سکرین کو، پھیلاؤ کا مطلب ہے اس کو ڈائمینشنز دے دینا۔ دیکھیں یہ سکس ڈائمینشنل پھیلاؤ ہے۔ سکرین کو ہم جس طرح دیکھتے ہیں، جیسے آپ کتاب کے صفحات کو دیکھ رہے ہیں تو صفحے پہ ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں ٹی وی کی سکرین میں تو آپ کو ایک ڈیپتھ کا احساس ہوتا ہے، یعنی تھرڈ ڈائمینشن محسوس ہوتی ہے، گہرائی۔ لیکن جو اللہ کی سکرین ہے وہ سکس ڈائمینشنل ہے، اس کے آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے۔ اس پھیلاؤ کو، ہر سکرین کو اللہ نے سکس ڈائمینشنل بنایا، اس کا مطلب بتایا جا رہا ہے، مہادا، پھیلا دیا۔ والجبال اوتادا، اب یہاں پہ پہاڑ گاڑ دیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب کریم جب ارشاد فرماتے ہیں تو اس کی دو ظاہری، دو ڈائمینشنز ہیں، دو رخ ہیں۔ ایک بظاہر، یعنی الفاظ کا ظاہری مطلب جو ہے जैसे जिबाल का मतलब आप पहाड़ लेंगे, लेकिन इसका बातनी मफहूम जो है वो ये बनता है कि वो चीज़ जो पहाड़ की तरह अंदर गड़ी हुई है, यानी क्या चीज़, हमारी तबीयत। हमारी तबीयतें जिस तरह से हमारे अंदर रासख हो गई हैं, ओ तादा मेखों की तरह ठुकी हुई हैं, और क्या हमने तुम्हारे लिए जमीन को फैला नहीं दिया, और क्या उसके अंदर पहाड़ों को जमा के गाड़ नहीं दिया। वह खलक न कुम अजवाजा, और बनाया तुमको जोड़ों में। जोड़ों से क्या मुराद है कि जाहिर और बातिन भी एक जोड़ा है, ऊपर नीचे भी एक जोड़ा है, पानी और प्यास भी एक जोड़ा है, नर और मादा भी एक जोड़ा है, और फिर ये हर बंदे का जाहिर और बातिन भी एक जोड़ा है। ये जमा का सीगा है। वह खलक न कुम, तुमको तखलीक किया जोड़ों में। अब हम नर और मादे वाला जोड़ा तो लेते हैं, लेकिन ये जिन जोड़ों की वजह से हमारे दर्द लगे हुए हैं वो भी इसमें शामिल है। इंसान को जोड़े बना दिया गया, जोड़ा दर जोड़ा दर जोड़ा। अब आप अपनी आंखें देखें तो जोड़ा, नाक के दो नथने, नाक कान के दो सुराख, वगैरह वगैरह, ये कई जोड़े हैं। तो ये सारे ही यहाँ पे जेरे बहस आ गए, मादी जोड़े भी और गैर मादी जोड़े भी। वह जालना नौमकुम सुबाता, वह जालना कर दिया नौमकुम तुम्हारे लिए नींद को, सुबाता आराम, यानी नींद को। क्या हमने, बात हो रही है बड़ी खबर की, याद रखें इस चीज को, जहन में रखें कि बड़ी खबर में क्या बताया कि जमीन बनाई और उसको डायमेंशंस दी, उसके अंदर कुछ चीजें गाड़ दी गई, तुम्हारी तबीयत बना दी गई, तुम्हें जोड़ों में तखलीक किया गया, और तुम्हारे लिए नींद को आराम का जरिया बना दिया। वह जालना लैले लिबासा, नींद को आराम का जरिया बनाया, और लैल यानी रात के हवास। कुरान में लैल का मतलब रात नहीं है, कुरान में लैल का मतलब रात के हवास हैं या ख्वाब के हवास हैं, वो हवास जिनसे हम ख्वाब देखते हैं। वह जालना लैलो लिबास, लैला लिबासा, वह जालना लैला लिबासा। लिबास क्या होता है, प्रोटेक्शन देने के लिए, लिबास क्या होता है, जीनत देने के लिए। तो रात के हवास इंसानी रूह का लिबास हैं, यानी वो उनको इस्तेमाल करेगा तो उसकी जीनत बढ़ेगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। वह जालन नहारा माशा, अब ये माश का मतलब हमने लिया रोजी कमाने के लिए, लेकिन आप गौर करें माश का लफ्ज जो है ये ऐश से है, यानी आराम के लिए। वह जालन नहारा माशा, दिन के हवास को बनाया कि तुम आराम और आसाइश की चीजें बना सको या अरेंज कर सको। अब गौर करें, सोए हुए बंदे को पंखे की जरूरत नहीं है, सोए हुए बंदे को तकिए की जरूरत नहीं है, उसे बेड की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जिन हवासों में वो ये तरतीब के साथ काम करके ये सामान आसाइश जमा करता है वो नहार कहलाते हैं। वह बनाना फौकुकुम सबन शिद्दादा, और बनाया फौकुकुम तुम्हारे ऊपर, फौक कहते हैं ऊपर, मा फौकुल फितर तो आपने लफ सुना होगा। वह बनाना बनाया फौकुकुम तुम्हारे ऊपर सबन साथ, शिद्दादा मजबूत, यानी आपके ऊपर शऊर के सात दर्जे बनाए गए। उसके लिए यहाँ कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, ना समा का लफ्ज इस्तेमाल किया, जहाँ कुरान में समा का लफ्ज आएगा वहां पे मुराद शऊर के दर्जे होगा। यहाँ पे क्या कहा, वह बनाना बना दिया फौकुकुम तुम्हारे ऊपर सबान साथ, शिद्दादा मजबूत। वो यानी शऊर के सात दर्जे बनाए गए, वह जालनन सिराजम बहाजा, वह जालना सिराजम बहाजा, और कर दिया उसके अंदर एक रोशन चिराग। अब गौर करें कि हमारे शऊर के सात दर्जों के अंदर क्या चीज है जो कि चिराग का काम कर रही है, तो वो मेरी और आपकी जात है। हमारे यहाँ इसे रूह से मुतारिफ कराया गया, लेकिन असल में ये हमारे अंदर जात है जो एक चिराग की तरह रोशन है, जो अपनी सिफात से काम लेती है। अब आगे देखें, वह अनजल ना, और हमने नाजल किया। ये नून अलिफ ना का लफ्ज है, ये हम के लिए जमा का सीगा, यानी पूरा सिस्टम है, ये एक पूरा मबसूत सिस्टम है। वन अनजल ना, हमने उतारा, मिनल मो से राते मान सुजाजा। जरा गौर करें, मो से रात में आपको असर का लफ्ज नजर आ रहा है, ये किसी की आवाज जो है ना, ये साउंड जैसे कागज की सरसराहट वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जरा इसको कंट्रोल करें।
म्यूट कर लें जो लोग हैं ना, म्यूट कर लें बेटा।
वह अनजलना, और हमने नाजल किया, मिनल मोसेरात, इसमें मोसेरात में लफ्ज असर दिख रहा है, एन स्वादरे, यानी हमने यहाँ तर्जमा कर दिया कि बादलों में से पानी नाजल किया जोरदार। नहीं, इसका मतलब अगर हम असर से लें तो असर जमानियत को कहा गया है। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अनजलना मिनल मोसराते, असर यानी कि जमानियत में से। माँ कहते हैं हजूर कलंदर बाबा औलिया ने माँ का तर्जमा किया पानी का खौल, तसव्वुरात का खौल, पानी जो है ये तसव्वुरात का खौल है, यानी हम जमानियत में से तसव्वुरात को नीचे नजूल करवाते हैं सुजाजा पूरे बहाव के साथ। और फिर अब आप देखें ना, मैंने अर्ज किया कि कुरान में दो तर्जे हैं, एक आप जाहिरी मतलब ले रहे हैं तो आप आसमान से बादलों में से पानी उतरते देख लें, या अपने अंदर से उतरने वाले जो तसव्वुरात हमारे अंदर नाजल हो रहे हैं उनकी बात करें। ले नुखरेजा बेही, फिर निकालते हैं उसमें से, अखराज करना, ले नुखरेजा बेही, उसमें से निकालते हैं, हब्बम व नबाता। अब यहाँ हब का तर्जमा इन्होंने कर दिया अनाज, और नबात व नबाता सब्जा। जरा सा गौर करें, नबाता कहते हैं नबातात यानी उगना, वह हब्बन हब से है, हब का मतलब मोहब्बत प्यार, वो जो तसव्वुरात हमारे अंदर उतरते हैं उसमें से निकलते हैं ये क्या हब और ग्रोथ। अब गौर करें कि अगर माँ के दिल में बच्चे के लिए प्यार ना हो तो क्या वो ग्रो कर सकता है? The answer is no. जरा इस हवाले से, इस सतही तर्जमे से जरा ऊपर उठ के इसके गहरे मीनिंग्स पे तवज्जो देंगे तो ये देखें अल्लाह रब्बे करीम क्या बता रहे हैं। अनन नबाल अजीम, बड़ी खबर, वो बड़ी खबर की सारी जुजियात बता रहे हैं कि कैसे जमीन बनाई और आसमान बनाए और किस तरह से तुम्हारी जात को चिराग की मानिंद कर दिया, और हम तुम्हें तसव्वुरात अता करते हैं फिर उसमें से प्यार और नशो नुमा ग्रोथ के सामान होते हैं। वह जन्नत अल्फाफा, खुशियां, जन्नत का मतलब खुशी, अल्फाफा का मतलब है गहरी। इन्ना यौमुल फसल काना मिकाता, इन्ना बेशक फसल, फासले को यौम कहते हैं बनावट को, कि ये इन्ना यौमुल फसले, ये सारी बनावट फासलों से है, काना मिकाता, जिनकी मिकदारें तय हैं। अब आप इस कहेंगे कि ये क्या तर्जमा हुआ भला, जरा सा गौर कीजिए कि यहाँ हर चीज की बनावट इसलिए है कि उसकी हदबंदियां मुतायन हैं। बच्चा जब ग्रो करता है तो उसके हाथ अगर एक हाथ में सेल डिवीजन हो रही है तो वो एक हद पे जाकर रुक जाता है, ये है वो मिकात, यानी तय कर दिया गया कि इसने कितना ग्रो करना है। इसी तरह दूसरा हाथ बिल्कुल उतना ही ग्रो करेगा, जितना एक टांग ग्रो करेगी उतना दूसरी टांग ग्रो करेगी। इन्ना योमुल फसले, हमारे यहाँ योम का तर्जमा किया जाता है दिन, ये तर्जमा असल बात को समझने में रुकावट बनता है। योम कहते हैं बनावट को, जिसको हमारे हवास और हिस्सियात अपनी गिरफ्त में ले सके उसको योम कहते हैं। इन योमुल फसले, ये बनावट फासलों पे है, काना मिकाता, जिनकी मिकदारें मुतायन कर दी गई हैं। योम यनफखु फिस्सूरे फतातून अफवाज, योम ये बनावट यूं है, यनफखु जब फूका जाता है, फिस्सूरे, अब यहाँ सूर का तर्जमा देख लीजिए, हमारे यहाँ वो एक भोंपू है जिसके अंदर एक खास वक्त पे कुछ फूका जाएगा तो कयामत आ जाएगी, ये तर्जमा यहाँ नहीं बैठता। देखिए सूर के लफ्ज से क्या क्या लफ्ज बनते हैं, मुसविर का लफ्ज बनता है, सूरत का लफ्ज बनता है, तसव्वुर का लफ्ज बनता है या नहीं, तो क्या कहा, योमा ये बनावट यूं है, यनफखो फूका जाता है, फिर सूर जो सूरत का खाका बना होता है उसके अंदर कुछ फूका जाता है, तो फतातून अफवाजा, तुम ग्रो दर ग्रो उठ खड़े होते हो। ये अल्लाह अपना तख्लीकी निजाम वाजे फरमा रहे हैं, ये है असल बड़ी खबर। व फुतहत समाओ कानत अबवाबा, और शऊर खोल दिया जाता है और उसके अंदर दरवाजे बना दिए जाते हैं, यानी शऊर में से, यानी हमारे लाशऊर के जो दर्जे हैं उनमें बकायदा पैसेजेस बने हुए हैं। अब वाबा दरवाजे कहा गया है, डोर्स कहा गया, लेकिन अगर आप पैसेज कर दें तो हमारे शऊर के जो रास्ते हैं उनको खोल दिया जाता है ताकि वो हमारे लाशऊर से गुजर के हमारे शऊर तक आ सकें। ये क्या होता है, अब ये कौन सा सीन चल रहा है, यहाँ पे आके वो सैरतिल जिबालो फकानत सराबा, और जिबाल को जो चीज गाड़ी गई थी उसको चला दिया जाता है, फकानत सराबा, और यूं लगता है गोया वो थी ही नहीं, शराब की मानिंद दिखती है, यानी ये देख लीजिए शराब, जिबाल जिबिलत, ये जब आदमी अपनी मादी दुनिया की जिंदगी पूरी कर लेता है तो ये जिबिलत जो है उसके अंदर से उड़ जाती है। इस चीज को सैरतुल जिबाल फकानत सराबा कहा। अब आप गौर करें कि अगर हम इसे पहाड़ों का चलना मान लें तो हम ये मुशाहिदा तो हम हर रोज करते हैं, अगर आप कभी स्वात जैसी जगहों पे गए हो तो आपको बकायदा पहाड़ टूट के गिरते हुए नजर आते हैं और वो रगड़ खा के उनके पत्थर जो हैं वो रेत बन जाते हैं, तो क्या ये उसकी तरफ इशारा है, तो जवाब है कि नहीं, बात मादी अल्फाज में की जा रही है लेकिन इसके मीनिंग्स जो हैं वो आप हमारी और आपकी जिंदगियों पे लागू भी होते हैं और उनके लिए मशले राह भी हैं। फरमाया व सैरतिल जिबालो फकानत सराबा, फिर जिबिलत को हटा दिया जाता है और वो ऐसे लगता है जैसे थी ही नहीं। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, अब जहन्नम इन्होंने तर्जमे में लिखा कि जहन्नम जो तुम्हारी पाक में, नहीं, मिरसाद का असल मफहूम यह है जैसे एक रास्ता है और उसके दोनों तरफ दलदल हो, तो यही कहा जाएगा कि जहन्नम, यानी अगर वो दलदल को आप जहन्नम कहें, अगली आयत से ये बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि जहन्नम तुम्हारे दोनों तरफ है। क्या कहा, ले तागीन माबा, ये जो तगा करने वाले हैं, जो रास्ते से हटने वाले हैं, ये उनके लिए ठिकाना बन जाएगी। अगर कोई बंदा सीधे रास्ते पे चलते हुए दाएं या बाएं चलेगा तो वो जहन्नम में फंस जाएगा, यानी जहन्नम पछतावे को कहते हैं, पछतावे में गिरफ्तार हो जाएगा। ले तागीना, तगा करने वालों के लिए, तगा का मतलब है अपनी हदों से बढ़कर चलना, रास्ते की हदों से बाहर निकल जाना। ये कई जगह कुरान में बार बार आया है ये लफ्ज। ले तागीना, तगा करने वालों के लिए ठिकाना है, ले बेसीना फीहा अहकाबा, ले बेसीना वो रहेंगे फीहा उसमें, अहकाबा मुद्दतों, ला यजुकूना फीहा बर्दम वला शराबा, ला यजुकूना न चखेंगे फीहा उसमें, यानी जब आप वो दलदल में जा फंसेंगे, रास्ते से डेविएट करेंगे, तगा करेंगे, सरकशी करेंगे और रास्ता छोड़कर साइड पे जाएंगे, तो अब दलदल में फंस जाएंगे और वहां पे न चखेंगे उसमें बर्दन ठंडा, वला शराबा ना पीने को कुछ मिलेगा ना ठंडक होगी, इल्ला सिवाय हमीमन व गस्साका, हमीम हमाम से, हमाम का लफ्ज सुना हुआ है, यानी गरमाइश को, तपिश को, वहां पे कुछ ना चखेंगे जो ठंडा भी नहीं होगा और ना पीने को कुछ मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो गर्म होगा। गसाका, गसक कहते हैं कराहत आमेज को, इसीलिए बाज मुतरजमीन ने गसाका का तर्जमा किया कि खून और पीप मिला के पिलाई जाएगी। जरा अंदाजा करें कितना भयानक कराहत आमेज वो मंजर पोर्ट्रे किया है। जजान विफाका, और ये जजा है, अंदाजा करें, हम जजा हमेशा पॉजिटिव मानों में लेते हैं, यहाँ पे ये तुम्हारा है, तुम्हारा रिवॉर्ड है, किस चीज का, विफाका, कि तुम जुड़े क्यों, तुम गलत चीज के साथ जुड़े क्यों। विफाक कहते हैं ना, विफाक वफा करना, यानी किस, जैसे फेडरेशन, कन्फेडरेट करना, तो ये तुम्हारी इस कन्फेडरेशन, तुम्हारा ये जो ताल्लुक रखना था गलत चीजों से, ये उसकी जजा है। इन्नहुम कानू ला यरजौना हिसाबा, अब वो गलतियां क्या हैं, इन्नहुम कानू ये समझते थे, ला यरजौना हम रजू नहीं करेंगे हिसाबा, और ना कोई हमारा हिसाब लेगा। गौर करें कि ये समझना कि मैं अपने डीड्स के लिए, अपने अफकार के लिए या अपने करतूतों के लिए कोई जवाबदेह नहीं हूं, मेरी कारकर्दगी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, इस बात को अल्लाह ने कितना वाजे कर दिया कि यू आर आंसरेबल फॉर योर डीड्स। इन्नहुम कानू ये हैं वो जो समझते हैं, ला यरजौना कि हम नहीं पलटेंगे हिसाबा, हिसाब देने को, वह कज़बू बे आयातना किज़ाबा, और ये हमारी निशानियों को झुटलाते थे बड़ी बदतमीजी से। किज़्ब कहते हैं ऐसी हालत को, या कज़्ब कहते हैं ऐसी हालत को कि जिसमें बंदा किसी को मना करे और बदतमीजी से मना करे। वह कुल्ल शैन एहसानहु किताबा, और हर चीज का रिकॉर्ड एक जगह महफूज कर दिया है। हसन, किला बंद होने को, सेव करने को कहा जाता है। वह कुल्ल शैन, हर चीज, एहसानहु सेफ गार्डेड है, किताबा रिकॉर्ड की शक्ल में। फजूकु पस अब चखो, फलन नज़ीदुकुम इल्ला अज़ाबा, पस नहीं इजाफा करेंगे तुम्हारे लिए इल्ला सिवाय अजाबा, अजाब के अलावा किसी और चीज में इजाफा नहीं होगा। याद रखें अजाब किसे कहते हैं, देखें किसी को सिस्टम से आउट कर दिया जाए तो ये जो उसको सिस्टम से बाहर निकालना है असल में यही अजाब है। ये मरना जीना कोई अजाब नहीं है, मरने के बाद अगर आप सिस्टम में रहे तो ये सवाब है या कमाल है या फौज है, यानी कामयाबी है, और अगर आप सिस्टम में से आउट कर दिए गए तो ये अजाब कहलाता है। देखे ना, एक बच्चे को माँ इस कदर तंग आ जाए, उससे इस कदर बेजार हो जाए कि उसे घर से निकाल दे, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी, अब उसके पास न रहने को कोई ठिकाना है न खाने का कोई इंतजाम है, तो इस कैफियत को अजाब कहा गया है। फलन नजीदुकुम, और पस नहीं करेंगे, नजीदुकुम तुम्हारे लिए इजाफा, ये नजीद और मजीद का लफ्ज याद रखें, इल्ला सिवाय अजाब के, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, बेशक मुत्तकी कामयाब हो गए। मफाजा, कुरान ने फलाह का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, यहाँ पे मफाज यानी फौज कामयाबी कहा है कि मुत्तकी, मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी कहते हैं वो बंदा जो समझने में एहतियात करता है, खुल के सोचें, खुल के सोचें, हर तरह के ख्याल को जहन में आने दें, आने वाले ख्यालात पे पाबंदी लगाना कोई इलाज नहीं है, जब आप उसको अखज कर रहे हैं, अपना मतलब जब अखज कर रहे हैं, उसमें एहतियात करने का नाम है तकवा। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं इन्ना लिल मुत्तकीना, मुत्तकियों के लिए है कामयाबी, और कैसी कामयाबी? हदायका व अनाबा व कवायबो अतराबा। अब ये उस कामयाबी के नतीजे में जो खुशगवार कैफियतें उनके लिए ये अल्फाज हैं। हदायक कहते हैं प्राइवेट बाग को, ऐसा बाग जिसके गिर्द चार दीवारी लगी हो, जिसमें कोई ट्रेसपासिंग ना कर सके। उनाबा अंगूर को कहते हैं, व कवायबा अतराबा, अब इन्होंने यहाँ कर दिया कि हम उम्र साथी, व कासन दहाका, और छलकते जाम, यानी कि आप इससे अंदाजा करें कि कैसा मैरिमेंट, कैसी खुशियों का डिलाइट का सामान जो है वो दिखाया जा रहा है। ला यस्मऊना फीहा, वहां पे न सुनेंगे, ला यस्मऊना, न समात में पड़ेगी कोई बात, फीहा उस हालत में, लगविन वला किजाबा, कोई फजूल बात भी नहीं सुनेंगे और ना ही कोई उनको झुठलाएगा। जजा में रब का, ये जजा है तुम्हारे रब की तरफ से, अतान हिसाबा, उसके हिसाब से की गई एक अता की शक्ल में, यानी ये जजा तो है लेकिन अता है, यानी ये तुम्हारे सिर्फ काम कारनामों का रिवॉर्ड नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से उसके अपने हिसाब से एक अता के तौर पे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रब समावात वल अर्द व मा बैनहुमुर रहमान, रहमान ला यमलकून मिनहु खिताब, ला यमलकून मिनहु खिताब, वो रब जो के समावात और अर्द का है और जो कुछ उसके दरमियान में है, रहमान का लफ्ज याद रखें, रहम को बनाने वाला, तख्लीकी निजाम को बनाने वाला, ला यमलकूना, कोई मलकियत ऐसी नहीं है मिन हो उसमें खिताबा के वो उससे खिताब कर सके कि जी आपने मुझे थोड़ा दिया या आपने मुझे ज्यादा दे दिया, ऐसी वो कोई बात नहीं कह सकेगा। यौमा, ये बनावट ऐसी है, यकूमु रूह व मलाइकतु सफ्फन, ये बनावट ऐसी है कि रूह और फरिश्ते उसके सामने कायम हो जाएंगे। देखिए, जब हर कोई भी रूह तख्लीक की गई, हर रूह जो तख्लीक की गई उसके साथ 20,000 फरिश्ते तख्लीक हुए, और ये वो हालत है जिसमें अल्लाह के सामने वो सब कायम हो जाएंगे, सफ़न सफारा होकर, यानी एक सफ की सूरत में, ला यतकल्लमूना, और कोई बात नहीं कर सकेगा, इल्ला सिवाय मन आज़ना लहुर रहमान, सिवाय उसके जिसको अल्लाह इजाजत देगा, आज़ना यानी इजाजत देगा, कहेगा कि बोल, लहुर रहमान, जिसको रहमान की तरफ से बात कहने की इजाजत होगी, वकाला सवाबा, और वो बहुत ही साहिब खरी नपी तुली सही बात करेगा। सवाब यहाँ स्वाद से है, सवाब साहिब, साहिब बात करेगा, जालेकल यौमुल हक को, वो बनावट है हकीकत पे, ज़ालिकल यौमुल हक को हकीकत पे बेस्ड है। फमन शाअत्तखज़ा, अब जिसका जी चाहे, पस जिसका जी चाहे, अत्तखज़ा इला रब्बे ही माबा, वो अपने रब के करीब अपना ठिकाना पकड़े। यानी ये सारी बनावट हकीकत बेस्ड है, अब जिसका जी चाहे वो इसको अपना ले और अपने रब के पास अपना ठिकाना बना ले। इन्ना अनज़रनाकुम अज़ाबन करीमा, मेरा काम तो तुमको सिर्फ वार्निंग देना है, बेशक हमने आपके लिए ये वार्निंग का निज़ाम बना दिया। किस चीज़ की वार्निंग? अज़ाबन करीबा, कि अगर तुमने इसको फॉलो ना किया तो करीब है कि तुम्हें सिस्टम से आउट कर दिया जाए। यौमा यंजुरुल मर्रो, ये बनावट ऐसी है कि इसमें बंदा देखता है, मर कहते हैं बंदे को, आम आदमी, यंजुरु नजर आता है उसको, मा कद्दमत यद्दउ कि उसके हाथों ने क्या आगे भेजा, वह यकूलुल काफिरो और जिन्होंने अपनी मर्जियां की होती हैं, जिन्होंने कुफर किया होता है, कुफर का मतलब इनकार करना तो है, लेकिन इनकार किस बेस पे किया जाता है? क्योंकि हम इनकार इसलिए करते हैं कि भाई हमारी मर्जी नहीं चल रही, तो हम अपनी मर्जी चलाने के लिए इनकार करते हैं, तो इसको कुरान कुफर कह रहे हैं। वह यकूलुल काफिरो, कुफर करने वाले बोलेंगे, या लैतनी, है काश, कुंत तुराबा, काश के मैं तो मिट्टी ही रहता, यानी काश के ना मेरे अंदर रूह फूंकी जाती, ना मैं अपनी मर्जियां करता, ना मैं आज सिस्टम से आउट होता। ये सारी बात अल्लाह ने नबाल अजीम के जेल में फरमाई। जी कोई सवाल?
जी सवाल
का? जी वालेकुम अस्सलाम।
मैं चाह रही थी कि ये जो मीखों की तरह गाड़ी हैं पहाड़, और वो आपने तबीयत का जिक्र किया, इस पे थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन कर दें कि जो हमारी आदतें होती हैं वो हमारी तबीयत या फितरत।
जी हाँ जी हाँ, असल में फितरत और हमारी जो जिबिलत है ना, जिबिलत, देखें दो चीजें, फितरी, हजूर मुर्शिद करीम ने किताब कलंदर शऊर में फितरी तकाजे और जबिली तकाजों का तस्करा किया, हाँ या नहीं? जबिलत पे हमें इख्तियार है, फितरत पे इख्तियार नहीं है। इसकी मिसाल ये है कि बच्चे का पैदा होना एक फितरी अमल है, लेकिन माँ की मोहब्बत जो है ये एक जबिल्लत है। आप गौर करें कि जब कोई बंदा, मतलब कि अपना बच्चा किसी दूसरे के हवाले कर देता है, तो वो उस बच्चे से लेने वाले उस बच्चे से उसी तरह प्यार करते हैं, तो ये उनके अंदर फितरी जज्बा तो नहीं है? अगर फितरी हो तो माँ बच्चे के मरने के साथ मर जाए। जबिलत जो है वो हमारे वो ट्रेट्स हैं जिनको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं। इसमें दीगर अनवा में भी है जबिलत, इंस्टिंक्टिवली जो काम किए जाते हैं वो जबिलत कहलाते हैं, जो इंस्टिंक्ट के तहत किए जाते हैं, और जो हमारी नेचर है, हमारी फितरत है, फितरत वो है जिसको अल्लाह ने बनाया। अब सोना एक फितरी अमल है, सांस लेना एक फितरी अमल है, लेकिन किसी से मुस्कुरा के बात करना ये जबिली अमल हुआ, किसी की बात का बुरा मनाना या ना मनाना ये हमारे इख्तियार में है, ये सब जबिलत में आ जाते हैं, इनको हटा दिया जाता है और जो फितरी काम है वो हो रहे होते हैं। काफी है
जी, बहुत शुक्रिया।
असल में कुरान हकीम को जब हम अप्रोच करते हैं ना, तो एक तो ये कि हम सिर्फ पढ़ते रहें, तिलावत करते रहें, किरत करते रहें और सवाब कमाते रहें। एक ये कि ज़रा इस पे खुले जहन से गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि ये लफ्ज़ क्यों बोला गया। अगर हम डिक्शनरियों का सहारा लेके चलें तो हमें पता चलता है कि जी जिबिलत, जब जिबाल तो कहते पहाड़ को है। तो ये जब हम रूहानी पर्सपेक्टिव से इसमें गौर व फिक्र करते हैं तो हैरत होती है कि इंसान के बारे में अल्लाह बातिन की खबर भी दे रहा है उन्हीं लफ्ज़ों से, वही अल्फाज जो जाहिर में हमारे सामने एक तस्वीर कशी कर रहे हैं कि पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया गया। बिल्कुल ठीक, हमें नजर आते हैं पहाड़, ये सतही अंदाजे फिक्र है। लेकिन जब हम गौर करते हैं और इसकी गहराई में उतर के समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमें किस तरफ मतवज्जो कर रहा है, तो मैंने आपको तवज्जो दिलाई और ये तवज्जो मैंने क्या दिलाई, मुर्शिद करीम ने दिलवाई थी, तो वही हम आगे पास ऑन कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? चले, अल्लाह खुश रखे जी। अगर कोई और सवाल हो तो बेशक आप लिख के रखें, फिर बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आज रुक जाते हैं, इतना काफी है जी।
हम सब इंशाल्लाह।